संकीर्तन यज्ञ की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीर्तन में सहयोग दिया। सो अभी हम हमारा जो गंगा कथा पेंडिंग चल रहा है, उस गंगा कथा को हम आज अपना पूर्ण करते हैं। तो उसके अंदर हम अभी तक जो चर्चा कर चुके हैं कई सारी चीजों पर, तो हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की जो ये जल धारा है ये पृथ्वी पर कारण समुद्र से प्रकट होती है, और हमने देखा अभी तक जो सुना कि किस प्रकार से ध्रुव लोक से होती हुई, सप्त ऋषि वर्षों से होती हुई, और फिर बाद में पृथ्वी पर किस प्रकार से ये अलकनंदा नदी जो है वो हेमकूट और हेम पर्वत से होती हुई भारतवर्ष में आती है, और फिर भारतवर्ष में पूरा उसको कवर करने के बाद में लवण सागर में लवण सागर में जाकर के क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाती है। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से ये गंगा जी प्रकट होती हैं, उनके प्राकट्य के बारे में सुना, और फिर हमने सुना कि किस प्रकार से वामन देव भगवान ने जब अपना अवतार लिया तो उन्होंने वामन देव के रूप में जब अपने तीन पग भूमि में बलि महाराज से मांगा, तो एक पग में जब उन्होंने ऊपर के सात लोगों को नापने के लिए अपना पांव उठाया तो उनके अंगूठे से क्या हुआ, करण सागर के समुद्र के जल में क्या हो गया, लेयर में एक छेद हो गया, और उस छेद में से धीरे धीरे करण सागर का समुद्र का जल कहां बिखरने लगा, नीचे आने लगा, और वो गंगोत्री जहां आप कल जाएंगे, कल गौमुख से वो प्रवेश करने लगा, और वो बाकी फिर पूरी पृथ्वी को पवित्र करता है। तो एक कथा इस प्रकार से है, बाकी एक कथा इस प्रकार से आती है कि ये जो अलकनंदा नदी है इसका नाम भागीरथी नदी कैसे पड़ा। तो उसमें बताते हैं कि एक महाराज थे जिनका नाम था महाराज सगर। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। तो ये 60,000 पुत्र बहुत ही बलशाली थे और बहुत ही तपस्वी थे, लेकिन जो ये सगर महाराज के पुत्र थे, इन सगर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और अश्वमेघ यज्ञ करने पर क्या हुआ, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ क्या अवस्था होता है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता है और पूरी पृथ्वी पर, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में, पूरी पृथ्वी के ऊपर उस एक घोड़े को छोड़ा जाएगा और उसके ऊपर एक पताका लगाया जाएगा, एक फ्लैग होगा, उस फ्लैग पे लिखा होगा कि नो वन कैन बीट अस, मतलब कोई हमें हरा नहीं सकता है, और जो हराने की सोचता है ही हैज टू फाइट, उसको लड़ना पड़ेगा, और युद्ध करने के बाद में अगर वो जीतता है तो वो घोड़ा उनका, अन्यथा वो घोड़ा हमारा, ऐसे वो पूरी पृथ्वी पर जीत जाएगा तब एक अश्वमेघ यज्ञ पूरा होता है। तो इस तरह से सगर महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तो जो इंद्र थे, अब इंद्र को एक ही घबराहट होती है, मेरी पोजीशन है ना, हम सबको भी वही परेशानी रहती है ना, मेरे नीचे वाला मुझसे आगे ना निकल जाए, है ना, मेरी पोजीशन का क्या, तो हम हमेशा फियर में रहते हैं, स्केयर से, है ना, स्केयर होते हैं, फियर में होते हैं, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। जो भगवान पर भरोसा करता है ना वो कभी भी स्केयर नहीं होता, फियर नहीं होता, इसीलिए भगवान का एक नाम है अभय, और श्रील प्रभुपाद का नाम है अभय चरण। तो जो अभय चरण के चरणों में रहता है वो व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। रक्षति ते कृष्ण ना रक्षति ते कृष्ण, रक्षा करे तो भी कृष्ण है, नहीं करे तो भी कृष्ण। हमारे घर के अंदर पंखा होता है, उस पंखे के नीचे कई बार हम लेटते हैं और ऐसे इंसिडेंसेस सुनते हैं कि किसी का पंखा गिरा और उनके चेस्ट पे गिरा और उनकी डेथ हो गई। अभी ये बात सुनकर के कितने लोग अपने घर से पंखा निकाल देते हैं, निकालते हैं, क्योंकि दे हैव अ बिलीव, फेथ है कि हाँ कभी ये पंखा गिरेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं गिरने वाला। ऐसे ही हम पंखे पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन उस पे भरोसा नहीं करते जिसके कारण ये पूरी सृष्टि चलती है, कौन, कृष्ण। तो रक्षति ते कृष्ण ना रक्षति ते कृष्ण, लेकिन जो बाकी देवी देवता भी होते हैं, चाहे वो स्वर्ग लोग भी पहुंच जाए, लेकिन उनको घबराहट रहती है मेरी पोजीशन का क्या होगा। लेकिन एक भक्त जो होता है वो देवी देवताओं से ऊपर वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है, क्योंकि उसके मन में घबराहट नहीं होती कि कल क्या होगा, है ना। He never thinks of tomorrow. He never thinks of past. He enjoys the presence in the Krishna conscious ways. वो कभी पीछे का भी नहीं सोचता क्या हुआ, ये भी नहीं सोचता आगे क्या होगा, बस ये सोचता है कि आज का दिन मुझे भक्ति में गुजारना, आनंद से गुजारना है, कृष्ण सेवा में गुजारना है। तो इस तरह से, लेकिन जो इंद्र हैं, इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, 100, एक नहीं 100 टाइम्स। जब वो पूरे वर्ल्ड में जीत जाएगा तो वो इंद्र बन सकता है, है ना। अभी इंद्र को घबराहट हुई कि सगर महाराज ने तो अश्वमेघ यज्ञ लाइन लगा दी, एक पे 60,000 पुत्र हैं, सब बलशाली हैं, जीत जाते हैं हर बार। तो इंद्र ने घबरा करके उनके घोड़े को क्या किया, अर्थ से गायब ही कर दिया, चुराई लिया, चुरा करके कहाँ रख दिया, चुरा करके एक आश्रम में उन्होंने जाकर के उसको रख दिया। वो आश्रम कौन सा था, कपिल मुनि का आश्रम। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे है, हिंदुस्तान में, वो है गंगा सागर के किनारे कलकत्ता के पास में, है ना, जहां जाकर गंगा समाप्त हो जाती है। तो ये जो गंगा सागर के किनारे कपिल आश्रम था, वहां उस घोड़े को बांध दिया। उनके पुत्र जब आए तो उन्होंने काफी क्रोध किया, उन्होंने कहा कि हमारे कहाँ चले गए, घोड़ा कहाँ चला गया हमारा, आपने देखा क्या। तो कपिल मुनि तो अपनी तपस्या में थे, तो उन्होंने जब ढूंढा तो पता चला कि वहां पर एक घोड़ा था। वैसे कलयुग में लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे एक बार एक संत बैठकर तपस्या कर रहे थे और वहां पर एक हिरन आया, हिरन समझते ना, डियर जब आया तो आकर के उसने शेल्टर लिया किसका, एक साधु का। साधु कौन थे, एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे। और लोगों को ये लगता है किसी साधु को शेल्टर लेंगे ना तो शेल्टर में जीवन ज्यादा अच्छा होता है ना, शेल्टर में जीवन ज्यादा अच्छा है। अगर हम माता जी का शेल्टर ले तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छा है। शेल्टर में हमेशा जीवन कैसा है, अच्छा होता है। एक पतंग जो होती है, जब वो धागे से जुड़ी होती है तो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, बंदी होती है। लेकिन जब फ्रीडम की बात करते हैं ना, जैसे आजकल वर्ल्ड में एवरीबॉडी वांट्स फ्रीडम, फीमेल सेज आई एम इक्वल टू मेल, बट इट कैन नेवर हैपन। लेकिन जो ऐसी बातें होती है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, हर आदमी को अपनी आजादी, दो पैरों पर खड़ा होना, मैं, तो वो धागा कट जाता है। और फिर क्या होती है, पतंग धागे से जब कट जाती है तो ऊपर जाती नीचे जाती है। इसीलिए हमारी सोसाइटी डिग्रेड हो रही है वर्ल्ड वाइड, पीस इज नो वेयर। अमेरिकन कहते हैं इंडिया अच्छा है, इंडियंस कहते हैं अमेरिका अच्छा है, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ऑन गॉड समाप्त हो गई है। वो फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम में कभी आनंद नहीं है, शेल्टर में आनंद है। तो डियर ने भी शेल्टर लिया संत का आके, तो पीछे से एक शेर आया। शेर ने कहा, साधु महात्मा वो तपस्या कर रहे थे, कहा मेरा शिकार भागते भागते आपके शरण में आया, कहाँ है वो। अब साधु बड़ी असमंजस में था, दुविधा में था, अगर वो ये कह दे कि पीछे है तो वो क्या हो गया, किलर हो गया ना। वो भी जो हम गलत काम में अगर सहयोग भी करते हैं तो हमें उसका 1/6 भाग, 1/6 पार्ट वी हैव टू, है ना। तो अभी वो चुप रहे, क्या बोल कैसे सकता हूं। और अगर वो शेर को ये बोले आया नहीं तो झूठ हो जाएगा, तो संत तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ही वॉज इन इल्यूजन, अभी वो कंफ्यूजन में थे, है ना, बोले बोलू क्या। तो ही गेव अ वेरी राइट आंसर, ही सेज, उन्होंने बोला कि जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, और जिन्होंने जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। मतलब बोले मेरी आंखों ने देखा लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, मेरा मुंह बोल सकता है लेकिन उन्होंने देखा नहीं। और इस तरह से उन्होंने बोला, शेर भी कंफ्यूजन में हुआ और चला गया। तो हमको भी इसी प्रकार से हमेशा उत्तर देने चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ट्रूथफुलनेस का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना है, सत्य को किस प्रकार से बोलना है सोचना चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात अप्रियम सत्यम, वो सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। इसका मतलब बोले ना किसी को कुछ, अगर मैं ये ना बोलूं कि चार नियम करिए आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए, ये तो सत्य है, वो बुरा लगेगा तो कैसे बोलूं। बोलना चाहिए लेकिन इस तरीके से बोलना चाहिए किसी को बुरा ना लगे। तो कल हमारा चर्चा हो रहा था राधेश्याम प्रभु जी से, कि कुछ लोग भक्त होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप कहां देवी गॉड की वर्शिपिंग में लग गए हैं, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं ना, उनका फ्राई हो जाता है मन। 30 साल से मैंने शंभू किया और तुमने एकदम से बंद कर दिया कि देवी देवता कुछ नहीं भगवान, तो उनको गुणगान गाने का एक तरीका होता है। हर एक व्यक्ति को सुनना पसंद होता है क्या, अपना गुणगान, अपना ग्लोरिफिकेशन, अपना या फिर अपने प्रिय का, उनके शिव जी प्रिय है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति को जोड़ना है जो शिव जी का भक्त है, उसको जोड़ने का तरीका क्या है, वी शुड ग्लोरीफाई शिवा, है ना, वी शुड ग्लोरीफाई हिम। ऐसे मेरा अपना पर्सनल रियलाइजेशन है, जैसे कोई भक्त आए और बोले कि हम तो शिव जी की भक्ति करते, शिव ही सत्य है संसार में. अमेजिंग, वेरी नाइस, यू आर सच ए नाइस डिवोटी प्रभु, वेरी नाइस, कहां थे अब तक, हमें आपकी जरूरत है. अच्छा, बोले शिव जी तो बताया गया शास्त्र में वैष्णव नाम यथाम शंभु. अब इतना संस्कृत तो उसे आता नहीं, वो तो बस जल लेकर चढ़ाता है, सोमवार को व्रत रखता है, बस यही शिव जी की भक्ति है ना. तो उसको जब बताते ऐसा लिखा है, हाँ शिव जी कहते हैं पार्वती से आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम. ऐसा बताया गया पद्म पुराण में, उनको बताते हैं कि देखो विष्णु आराधना शिव जी करते हैं, शिव जी महान वैष्णव है, शिव जी ऐसे हैं, शिव जी वैसे हैं. तो जब वो खुश हो जाता है, अच्छा इतना सब आप जानते हैं, इसके आगे का मैं नहीं जानता, प्रभु जी आप बताइए, देन ही गेट कनेक्टेड. लेकिन वो पहले दिन आया और बोले मैं शिव जी का भक्त हूँ, और मैं बोलूं शिव जी का भक्त, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कृष्ण से प्रकट होते, ईश्वरम परम कृष्ण, कहां फंस गए बेवकूफ आदमी, तो कभी आएगा पलट कर. तो हमें उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके भगवान उसका गुणगान गा करके प्रेम पूर्वक उसे लाना चाहिए. तो इस तरह से जब कपिल मुनि आश्रम में उन्होंने जाकर के घोड़े को छुपा दिया, तो अभी क्या करे, इंद्र ने बांध दिया, तो सगर पुत्र आए और उन्होंने देखा और उनसे बोला कि दो हमारे हमारा घोड़ा तुमने बांधा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने बड़े तपस्वी होकर के लड़ाई झगड़े में फंसते हो. तो उन्होंने जब उनकी तपस्या भंग करी, उनको क्रोध आया और उनकी आंखें नेत्र खुलते ही क्रोधाग्नि में 60,000 पुत्र एक बार में एशेस बन गए, राख पूरा एश में कन्वर्ट हो गया. अभी जब उनको पता चला उनके वंशजों को उनके परिवार को, बोले अरे सगर महाराज बोले मेरे पुत्र जला डाले, महाराज ये क्या किया आपने, अरे कुछ तो करो, इनकी अब इनकी मुक्ति कैसे होगी. उन्होंने कहा देखिए एक ही तरीका है, इस संसार में पतित पावनी गंगा जगर पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो फिर इनकी राख जो है वो मुक्त कर सकती है इनको, अन्यथा ये इसी प्रकार से भटकते रहेंगे. इसीलिए इस कथा से ही प्रारंभ हुआ कि कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी अंत्येष्टि होने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, उसके एशेस को लेकर हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर लोग प्रवाहित करते हैं. तो ये जो प्रवाह करना है वहीं से प्रारंभ हुआ. लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा आलसी और कंजूस माइजर होते हैं, वो लोग कभी कभी फंस जाते हैं. वो प्रवाहित करने वाले पे एक कथा मेरे को याद आ गई अभी. एक बार एक महाराज थे, वो किसी गांव में आए और वो जो कथा करते थे तो वो ऐसे कथावाचक नहीं थे पारंपरिक, जैसे हमारे इस्कॉन के भक्त होते हैं. वो कैसे कथावाचक थे, आस्था चैनल वाले हैं ना, जो अपने आप से ही गुरुजी बन जाते हैं. और वो गुटखा पान मसाला भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं शाम को, और चाय कॉफी भी पीते हैं, नियमों का पालन भी तोड़ते हैं, और फिर भगवान की कथा का प्रोफेशन भी करते हैं. तो मुंह में उनके गुटखा होता था और वो सामने भक्त जब बैठे होते थे और बोलते थे तो उनके मुंह से क्या निकलती थी, जलधारा प्रकट होती थी. और जलधारा जब गिरती थी तो भक्त पहुंचते थे, आहा प्रभु जी वाह आज तो इतना सुंदर कथा सुनाया. तो एक भक्त बोला कि महाराज आपके मुख की जो जलधारा मेरे मुंह पर प्रवेश करती है तो इससे क्या अपराध नहीं होगा. तो बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते, जो व्यास आसन पर बैठकर कथा करता है उसके मुंह में तो गंगा जी होती हैं और तुम जो गंगा से पवित्र हो रहे हो. तो बोला अच्छा महाराज, दो दिन की कथा निकल गई है, मेरे को पता ही नहीं चला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 7 दिन कथा है, मैं कल आऊंगा. तो वो घर गया, घर जाके कुछ प्रसाद बनाया. 2-3 दिन में ऐसा होता है ना, प्रेम हो जाता है भक्त के प्रति, तो वो कुछ बना के हलवा वगैरह लेके आया, बोले महाराज आपके लिए हलवा. महाराज ने हलवा खाया तो खाते एकदम उल्टी कर दिया, वॉमिट हो गया. बोले इसमें क्या डाला है. कहा देखिए महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, इस गांव में रहता था, आज से कई साल पहले मेरी माँ गुजर गई, और जब गुजरी तो उनको हमने अंत्येष्टि संस्कार किया. मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि मेरी राख मेरी आशीष को कहाँ प्रवाहित करना, गंगा जी. तो कभी चार धाम जाने का मौका नहीं मिला, तो हमने हलवे में प्रवेश करके गंगा जी कल ही मालूम पड़ा. तो कल ही मालूम पड़ा तो आज प्रवाहित कर दिया तो मेरी माँ की मुक्ति हो जाए. लेकिन सगर महाराज के घर में उनके एक भांजे थे जिनका नाम था अंशुमन. उन्होंने ब्रह्मा जी से बहुत प्रार्थना करी कि भगवान आप हमारे घर पे क्या किए ब्रह्मा जी, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जब ऊपर से गिरनी प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलियों में उसको ले लिया है ना. तो अभी वो ब्रह्मा जी के पास में है गंगा की अविल धारा, लेकिन वो नीचे कैसे आए पृथ्वी पर ब्रह्मांड में. तो अंशुमन ने ब्रह्मा की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी हमारे जो भाई हैं 60,000, इनको मुक्त करने के लिए आप गंगा को पृथ्वी पर भेजिए। लेकिन वो भेजे नहीं, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण नहीं थी। उसके बाद उनके आगे एक वंशज में दिलीप महाराज आए, और दिलीप महाराज ने भी बहुत तपस्या करी, लेकिन वो भी उसको पूर्ण नहीं कर पाए। फिर उनके आगे वंशज आए भगीरथ महाराज। तो जब भगीरथ महाराज आए, उन्होंने पता किया कि राज्य पाठ के अलावा मुझ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं एक व्यक्ति के ऊपर अपने पूर्वजों का ऋण भी होता है। आपने भागवतम में सुना है कि नहीं, वैसे गीता के स्टार्टिंग में भी लिखा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार के ऋण है। देवी देवताओं के ऋण है ना, माँ बाप के ऋण और पूर्वजों के ऋण। जैसे आप कपड़ा सुखाते हैं अपना, है ना, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके पास में कि आपने सूर्य के सामने कपड़ा सुखाया और वो आपको बोले कि एक महीने बाद ये मेरा चार्ज हुआ प्रभु, प्लीज गिव मी, नहीं देते। पानी लेते हैं, अभी गंगा में खूब सब ने यमुनोत्री में जल भरा और वहां कोई खड़े होकर बोल रहा था 100 रुपीज पर पीस, ऐसा कुछ था नहीं, सब फ्री में है। लेकिन किसने बनाया ये सब, है ना? तो भगवान ने देवी देवताओं को बनाया, वरुण देव, अरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव। हम इनकी शीतलता, इनकी इनकी ऊष्मा जितना ग्रहण करते रहेंगे उतने हम इनके ऋणी बनते रहेंगे। तो इनका ऋण चुकाएं कैसे? एक जीवन में 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न करेंगे, है ना? इसीलिए कहा गया है, भागवतम में आता है कि सर्व आत्मनम, जो सर्व की आत्मा में रहने वाले हैं कौन, मुकुंद, उनकी शरण में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए ऋणी से चुक जाता है। ना उसके ऊपर माँ बाप का ऋण रहता है, ना पूर्वजों का ऋण रहता है। तो आपको अगर कोई आकर के बोले मेरे पे पितृ दोष चल रहा है, तो उस व्यक्ति को बोल सकते हैं क्या करो, कृष्ण शरण ग्रहण करो। कृष्ण शरण ग्रहण करने से और भगवान का नाम जप करने से आप अपने पूर्वजों के ऋण से, मातृ पिता के ऋण से, देवी देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, भूत प्रेत आदि के ऋण से सबसे मुक्त हो जाओगे। हम सभी के ऋणी हैं, किस गोत्र में उत्पन्न है उस गोत्र के ऋणी है, उन माँ बाप के जिन्होंने ये शरीर दिया उनके ऋणी है, स्कूल टीचर ने हमको एजुकेशन दिया उसके भी ऋणी है। तो वी आर लाइक डेब्ट फॉर एनी एवरीवन, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे इतनी सेवा। सो बेनिफिशियल है सर्व आत्मनम शरणम शरण्यम, उसकी शरण में जाना चाहिए जिसकी शरण में सब जाते हैं। गतो मुकुंदम परिहत्त कर्तम, उसकी शरण में जाना चाहिए कौन, जो है मुकुंद। मुकुंद का मतलब है मुक्ति दाता एक मुकुंद। मुकुंद की शरण में जाने से आपकी मुक्ति हो जाती है। तो कई लोग घबराते रहते हैं हमारे जाने के बाद में क्या होगा, हमारी राख को कौन गंगा में डालेगा, हमारे पास क्या होगा। तो घबराना नहीं चाहिए, जिस व्यक्ति ने जीवन काल में कृष्ण भक्ति करी है ना, उस व्यक्ति को मुक्ति की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मुक्ति तो उसी दिन उसकी शरण ग्रहण कर लेती है जिस दिन वो पहली बार क्या बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पहले दिन ही मुक्ति प्राप्त होती है उस व्यक्ति को, जब आपके सेल में या फिर आपके चक्रा में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और आकर के हरे कृष्णा मंत्र जपता है। ही इज नॉट अ डिवोटी, बट इफ ही चैंट्स हरे कृष्णा ही इज लिबरेटेड ऑन द सेम डे बाय चैंटिंग वंस। बट वाई इज चैंटिंग एवरी डे, टू गेट कृष्ण प्रेम, नॉट फॉर लिबरेशन। लिबरेशन तो उसी दिन हो गया जब आप कृष्णा कॉन्शियस बने, है ना? तो हम लोग लिबरेशन के लिए ट्राई नहीं करते हैं। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं, इसलिए वो शांत पीसफुल होता है, प्रशांत शांत होता है, है? तो इसीलिए हमें शांत रहना चाहिए। आगे जो ये भगीरथ महाराज थे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे बहुत सारे पूर्वज हैं जिनकी राख अभी भी यहीं पर है कपिल मुनि आश्रम के पास, तो मुझे लाना है किसको, गंगा जी को। ब्रह्मा की तपस्या करी, ब्रह्मा जी बोले देखो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन ये गंगा की जो धारा है ना, इसकी पावर ऐसी है कि अगर मैंने छोड़ दिया ऐसे ही कमंडल से, तो फिर क्या होगा, नीचे मुक्ति नहीं होगी 60,000 पुत्रों की, सगर महाराज के सबकी मुक्ति हो जाएगी, एक बार में प्रलय आ जाएगी। और आपने देखा कुछ 4-5 साल पहले केदारनाथ में आई थी वो 2012 में, और आप देखिए कि कल भी हम जब गंगोत्री गए कितना तेज करंट था, वो स्टार्टिंग नहीं है, आप सोचिए और कितना पावर होता है उसके अंदर। सोचिए जब ब्रह्मांड से ऊपर से गिरेगी उसकी पावर क्या है, प्रलय आ जाएगी पूरी पृथ्वी पे। कहा फिर क्या करें, कहा कि जाइए आप शिव जी से प्रार्थना करिए, शिव जी का एक नाम है आशुतोष, आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। कहा भगवान शिव जी की प्रार्थना करिए, तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करी और शिव जी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, जब गंगा ब्रह्मा लोक से आकर के कैलाश तक आएंगी तो मैं उनको अपने केश के अंदर, जटा के अंदर धारण करूंगा। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कर ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको यहाँ से रिलीज करूंगा, है ना। तो इतने से इतना प्रेशर कम हो गया, अब प्रेशर यहाँ से अभी ब्रह्मलोक से आएगी तो प्रेशर बहुत तेज रहेगा ना, तो प्रेशर को कम करने की शक्ति है शिव जी के पास। तो क्योंकि अभी हम शिव गुफा के पास में है तो हमें सुनना चाहिए कि शिव जी किस प्रकार से महिमामान बन जाते हैं। शिव जी कोई साधारण वैष्णव नहीं है। हम बोलते रहते वैष्णवा नाम यथाम शंभु, वैष्णवों में परम शंभु है, भाग कथाओं में भागवत पूर्ण है, नदियों में गंगा यमुना पूर्ण है। हाँ, तो इस तरह से कैसे शिव जी महान बन जाते हैं। आप देखिए शिव जी कैसी परिस्थिति में रहते हैं जहां एवरीथिंग इज अपोजिट। ही इज स्टेइंग इन कैलाश, कैलाश में रहते हैं। वहां पे टेम्परेचर कितना है, अभी आपने देखा यमुनोत्री में 7 डिग्री 4 डिग्री हो रहा था, कैलाश में कितना टेम्परेचर होगा,
माइनस 13 माइनस 40 डिग्री
टेम्परेचर में कपड़े क्या पहनते हैं। हमारे पास तो जैकेट्स हैं, वो क्या पहनते हैं, हाँ मृग चर्म। और फिर उनके पास में सिर के ऊपर सबसे ज्यादा शीतल प्रदान करने वाला चंद्रमा भी मस्तक पे विराजमान, और सबसे ज्यादा ठंडी जो नदी जिसमें आप गल जाएंगे उसको छूने में लगेगा वो उनके सिर में विराजमान है ना। ऐसी स्थिति में कुछ भौतिकवादी लोग सोमवार को उनको और एक लोटा जल और चढ़ा देते हैं ऊपर से, तो उससे शिव जी प्रसन्न होते होंगे। आपको यमुनोत्री में जब आप निकले वहां पे कोई आकर आपके ऊपर एक बाल्टी डाल देंगे तो आप प्रसन्न हो। हाँ, तो वो ये समझाना चाहिए भौतिकवादियों को कि आप उनकी परिस्थिति देखिए, कितनी विषम परिस्थितियों में तपस्या कर रहे हैं प्रभु है। उनके घर पे गले में सांप है ना, और सांप को कौन खाता है, मोर चाइनीज। अब ये टॉकिंग शास्त्र, सांप को कौन खाता है, मोर। अब मोर किसके पास है, शिव जी के पुत्र है कार्तिके, वो किस पर बैठते हैं, अभी उनका मोर हमेशा प्रयास करता रहता है कि मैं आकर के इनके सांप खा लूं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो उनके पुत्र का वाहन है तो नहीं खाता ना। और शिव जी के पुत्र है गणेश, गणेश के पास में है क्या, चूहा। तो चूहा जो है वो उसको कौन खाना चाहते हैं, सांप। तो वो उनके पुत्र के वाहन को खाना चाहते हैं, कोई उनको खाना चाहता है, ठीक है। और उनके घर में है एक नंदी गाय बैल, और उनकी वाइफ जो है माता जी उनके पास में क्या है, शेर है ना, शेर है उनका पर्सनल वाहन। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास ऑल्टो कार है, प्रभु जी के पास मर्सिडीज ऑडी है, उनके पास में टोयोटा है, ऐसे सबकी अपनी पर्सनल वाहन। तो माता जी के पास शेर, और शेर का खाना क्या है, गाय बैल। अभी तो हस्बैंड वाइफ के वाहन में लड़ाई, फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, बहुत मुश्किल परिस्थिति में शिव जी तपस्या कर रहे हैं। हमारे घर में तो छोटी मोटी अनबन में हम भक्ति छोड़ देते हैं। पर किसी से पूछो प्रभु माला कैसी चल रही है, प्रभु जी आजकल घर में बड़ा डिस्टर्बेंस है, माला ही नहीं हो पाते। उनका सोचो, सोचना चाहिए एक, अरे महान, हम उस वैष्णव परंपरा में हैं जहाँ शिव जी जैसे महान वैष्णव हैं जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी सदा क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से शिव जी बहुत महान वैष्णव है ना, ऐसी परिस्थिति में वो हमेशा भजन करते रहते हैं। और ऊपर से पार्वती जी को कंपटीशन देने के लिए गंगा को भी उन्होंने शेल्टर दिया। अभी गंगा को उन्होंने शेल्टर दिया तो एक और वाइफ आ गई ना, पर्सोनिफाइड गेंजेस केम इनटू द हेयर। तो अभी एक और पत्नी सिर पर हो, तो वो क्या बोलेंगी, पार्वती डायलॉग मारेंगी ना उनको, और बोलेंगी अच्छा आजकल गंगा को सिर पे चढ़ा रखा है। तो अभी तो बड़ी दुखदा अवस्था में है कि मदद करूं भक्तों की, कि परिवार मैनेज करूं, लेकिन इसके बाद भी इतनी विषम परिस्थिति में कभी शेर गाय को नहीं खाता, कभी उनका सर्प चूहे को नहीं खाता, कभी कार्तिक का मोर कभी उनके सर्प को नहीं बोलता, और आप देखेंगे सब अभी एक एक जगह पर बैठ करके भगवान के नाम का जप करते रहते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना क्यों करते हैं ऐसा। दो वी हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंट मोटिव्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, लेकिन फिर भी वो सब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो देवी देवताओं में महान बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फोकस एक है, क्या, कृष्ण है ना। ऐसे ही अगर हमारे परिवार में पत्नी बच्चा पति फैमिली में हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स जितने भी लोग हम साथ में रहते हैं सबका सेंटर ऑफ फोकस अगर कहे कृष्ण तो कभी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक तालाब है, उस तालाब के अंदर आप एक पत्थर फेंके इस किनारे, एक पत्थर फेंके इस किनारे, तो जब हम पेबल्स को फेंकते हैं पॉन्ड में क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, है ना। और ये अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स बनकर क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। लेकिन अगर सब एक ही जगह पेबल फेंके सेंटर में तो क्या होगा, बड़े बड़े कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो किनारों से टकराएंगे। तो ऐसे अगर सारी की सारी फैमिली कृष्ण कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा, हम बाकी लोगों को प्रचार कर सकते हैं कि देखिए वन हु डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, है ना, जैसे हम लोग डांस कर रहे हैं ना, वन हु डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, वन हु डाइंस टुगेदर शाइंस टुगेदर, है ना। तो हम लोग अगर साथ में प्रसाद ग्रहण करें, साथ में नृत्य करें, वन हु डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, है ना, one who dines together shines together। तो अगर फैमिली को साथ रखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबके सबको क्या बनना पड़ेगा, कृष्णा भक्त बनना पड़ेगा। तो इस तरह से शिवजी जैसे महान वैष्णव ने शरण दिया किसको, गंगा को। वो गंगा जी जब पृथ्वी पर आने लगी तो आने के टाइम में जानू मुनि एक मुनि है, वो बैठकर तपस्या कर रहे थे इसी चार धाम में। जानू मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो जानू मुनि को खलखल खलखल की आवाज सुनाई दी। अब भगीरथ तो बड़े खुश थे, गंगा को मैं पृथ्वी पर ले आया, लेकिन लेके जाना था कहां तक, ये गंगोत्री से लेकर के और उनको लेके जाना है गंगा सागर तक, कलकत्ता तक, और बहुत लंबा रिवर बेड क्रॉस करना है। लेकिन यहाँ चार धाम में खलखल खलखल होते ही जानू मुनि एंजाइटी में आ गए, मेरी तपस्या नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, इतने पावरफुल सेंट थे, एक बार में गंगा को, भगीरथ बोले अच्छा है भाई, अरे तुम्हारी प्यास बुझ गई, मेरा काम बिगड़ गया था। तो वो शायद लिमका का या थर्स्टी का थम्सअप का ऐड देखते हैं ना, और प्यास बुझाए, है ना, तो उनकी प्यास बुझी और वो एक बार में गंगा जी को ले गए पूरा। अभी वो बोले अभी क्या करूं मैं, तो गंगा से अपने 60,000 सगर पुत्रों का मुक्ति करानी है। तो उन्होंने प्रार्थना किया, जानू मुनि से रिक्वेस्ट किया, उनको पूरी कथा बताई, तो कृपावश उन्होंने फिर क्या किया, उनको अपने शरीर से दोबारा प्रकट किया। तो प्रकट होने के कारण जानू मुनि की पुत्री बन गई, जो जिसके शरीर से प्रकट होता है वो उसकी पुत्री बन जाती है या पुत्र बन जाता है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया जाह्नवी। और रोज हम एक भजन गाते हैं गौरा आरती, उसमें क्या गाते हैं,
जाह्नवी तट बने जगत मान जग मन लो भावित जग मन लो
ठीक है। तो ये जाह्नवी है इसीलिए है क्योंकि इनके तट के किनारे गौरांगा महाप्रभु बहुत सुंदर अपनी दर्शन देते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर को दर्शन होता है ना, गौरांगा का दर्शन है, उनके पार्षदों का दर्शन है। तो ये जाह्नवी जो है जानू मुनि के शरीर से प्रकट होने के कारण और जाह्नवी कहलाती है। और इस प्रकार से गंगा पृथ्वी पर आई और उन्होंने सभी लोगों को मुक्त करने की शक्ति प्राप्त कर रखी है जो यहाँ आएंगे, और वो सभी अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक कथा आती है। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज का वर्णन है किस प्रकार से गंगा पृथ्वी पर प्रकट होती है। तो बताया गया है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा महाभिषेन। तो ये जो राजा महाभिषेन थे, ये ब्रह्मा जी के साथ में इनका बड़ा अच्छा रिलेशन था, और ब्रह्मा लोक तक जा सकते थे ये राजा। से पहले राजा होते थे ना, उनकी ऑस्टेरिटी इतनी थी, पृथ्वी लोक से ही वो अपने योग तपस्या बल से ब्रह्म लोक तप लोक में भ्रमण करते थे। आज भी नारद मुनि करते हैं, है ना। जैसे शिल प्रभुपाद जी एक बार लंदन में लेक्चर दे रहे थे, आपने सुना होगा, लेक्चर देते वक्त प्रभुपाद जी बोले ब्रिंग वन चेयर, तो ये डिवोटी भाग कर चेयर लेकर आए, बोले देन थोड़ी देर बाद बोले ब्रिंग वन मोर चेयर, फिर वो एक और चेयर लेके आ गए। तो भक्त ने देखा लेक्चर समाप्त हो गया और सबको चले गए, तो बोले प्रभुपाद यू कॉल्ड अस टू ब्रिंग टू चेयर्स बट फॉर होम नो डिवोटी केम टू सिट ऑन दीज चेयर्स, यू डोंट सी नो प्रभुपाद व्हाट, और नारद एंड ब्रह्मा केम टू हियर द लेक्चर। तो नारद मुनि स्टिल, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी दिव्य आंखें नहीं है ना, भक्ति में आंखें नहीं है, हमें कैटरेक्ट हुआ है, माया का कैटरेक्ट है। तो ये भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा और इसमें से माया निकल जाएगी, तब हम फिर देख पाएंगे, फिर क्लैरिटी आएगी, ये ओपेसिटी चली जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा कि भक्त का गुण कितना इंपॉर्टेंट होता है, भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, वेद व्यास ने संजय को दिव्य नेत्र दिए, इसलिए हम लोग भी एक भजन गाते हैं रोज सुबह, उसमें क्या गाते हैं,
चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जयते, प्रेम भक्ति अविद्या विनाश जयते, वेद गाए यहाँ रचरित हो, वेद गाए यहाँ रचरित हो, वेद गाए यहाँ रचरित हो, श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु, लोकनाथ लोके रजीवाना, लोकनाथ लोके रजीवाना, शिला प्रभुपाद दैलो शरणा, प्रभुपाद पतित पावना, आहा प्रभु करो दया नो मोर पद छाया, आहा प्रभु करो दया नो मोर पद छाया, हाय आहार एबे आशा गोशु त्रिभुवाना, एबे आशा गोशु त्रिभुवाना, प्रभु पदा जया गुरुदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा जया गुरुदेवा।
तो ये जो गुरुदेव हैं इनसे हमें चक्षुदान मिलता है और फिर हम देख पाते हैं सही मायने में भक्ति क्या है। तो ये जो महाभिषसेन राजा थे ये पहुंच गए ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक में वहां पर गंगा जी का भी आना जाना था, जो भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली देवी है वो ब्रह्मलोक में तो रहेंगे ना, अभी ब्रह्मा के कमंडल में तो जल रहता है लेकिन पर्सोनिफाइड गेंजेस कैन रोम अराउंड, तो गंगा घूम रही है हर जगह अपने स्त्री रूप में, और वो घूमते घूमते ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के एक सभा चल रही थी, उस सभा में पहुंच गए और वहां उनके वस्त्र जो थे वो हवा के कारण उड़ने लगे, और उड़ने से क्या हुआ जो राजा महाभिषेन थे उनको ध्यान पूर्वक उनके स्त्री अंगों को देखने लग गए, और इसको देखते हुए वहां 8 वसु थे, वो वसु जो थे और वो देख देख कर हंसने लगे, हाँ 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 देखो राजा को देखो, स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक आ गया लेकिन इसकी कामुकता इसका लस्टी डिजायर्स अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। इस तरह से उन पर हंसे तो सभी को उन्होंने श्रापित किया, गंगा ने कहा कि तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और फिर आप लोगों को शरीर धारण करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, आपको दर्शन करना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरी शयनम। शंकराचार्य कहते हैं बार बार माता की गर्भ में आना ये सबसे बड़ा दुख है ना, और हम सब कुछ भी काम करें अगर भक्ति नहीं करेंगे ना, कितनी यात्रा करें कितना भी कुछ करें लेकिन अगर हमने ध्यान पूर्वक भक्ति नहीं करी, ध्यान पूर्वक गुरु के आदेश का पालन नहीं किया तो ये फिर हमें दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। हम इसीलिए कहते हैं ना श्रीमताम शुचिनाम गृहाम योगाम भ्रष्ट बजायते, योग भ्रष्ट, ये योग भ्रष्ट शब्द क्या है कि हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए क्योंकि हम भ्रमित थे, हमने गुरु के आदेशों को पूर्ण रूप में अपने जीवन में अपनाया नहीं, तो हम चाहते हैं तो गुरुदेव के वर्ड्स एज इट इज, श्रील प्रभुपाद के शब्द एज इट इज लेने चाहिए, है ना। तो हमको वही चीजें करनी चाहिए जो गौरंग महाप्रभु ने कही, जो हमारे आचार्यों ने कही है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, तब हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नीचे आए वसु, 8 वसु, और साथ में राजा महाभिषेन को भी नीचे आना पड़ा। वो राजा किस रूप में आए, वो राजा शांतनु के रूप में प्रकट हुए, और राजा शांतनु के रूप में प्रकट होकर के उनको कहा गया कि आपको विरह वेदना भोगनी पड़ेगी, जिससे आप मुझसे आसक्त हुए हैं ना, अब इस आसक्ति को काटने के लिए विरह, अटैचमेंट को काटने के लिए डिटैचमेंट। अच्छा, वो वहां पर श्राप दिया लेकिन सभी ने प्रार्थना करी हमसे गलती हो गई, तो गंगा ने कहा कोई बात नहीं आप जल्दी मुक्त भी होंगे और उसकी कृपा भी प्राप्त होगी लेकिन अभी आपको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो राजा महाभिषेन नीचे आकर शांतनु बनते हैं और जो 8 वसु थे वो फिर बाद में शांतनु महाराज के वही पुत्र बनते हैं, जिनको जब उनका विवाह गंगा से होता है शांतनु महाराज का, तो वो कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो आपने महाभारत में देखा होगा सुना होगा कि विवाह होने के बाद उन्होंने कहा कि जब भी हमारे घर पुत्र होंगे तो आप कभी मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, उनका कैसे इनका क्या इनके साथ ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और फिर वो क्या देखते थे, जैसे ही पुत्र प्राप्त होता था और वो राजा खुश होते थे कि मेरा कोई वंशज आया, अब ये गद्दी संभालेगा और 50 साल के बाद मैं क्या करूंगा, वानप्रस्थ लूंगा। 50 साल के बाद व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, वानप्रस्थ, है ना। वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थान करना चाहिए। हमारी हिंदी गिनती को भी देखें तो हिंदी गिनती भी कहती है 50 के बाद गिनती क्या आती है, 51 बा वन, अरे अब तो जा वन। अभी भी बैठा है अपने घर के अंदर, जाता है नहीं। और कठोर उसकी आसक्ति अटैचमेंट इतने हैं, ही नेवर वांट्स टू लीव द प्लेस। एक्चुअली पोजीशन मिल जाए उसको फिर सस्टेन करना चाहता है, सोचता है ये परमानेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये तो एक यात्रा है। जैसे एक बार एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति यात्री था, ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलिया से वो घूमने आया, जैसे हम आए यहाँ घूमने के लिए। तो जब वो आया घूमने के लिए, उसने कहा मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के संत जो होते हैं ना वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो मैं देखना चाहता हूँ किसी संत के घर को, कुटिया को। तो वृंदावन लेके गए, वहां पर एक गोस्वामी बैठे थे और वो बड़े प्रसन्नतापूर्वक, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, पंखा भी नहीं है, कुटिया के अंदर बैठे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो यात्री ने प्रवेश किया और देखा, कहा यार कितने खुश हैं। तो पूछा आप इतने खुश कैसे हैं, कहा कि बस खुश रहते हैं, भगवान के नाम में खुश रहते हैं। कहा लेकिन आपके पास ना एसी है, ना गाड़ी है, ना आपके बच्चे कोई अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ना आपका प्रमोशन हुआ है, ना मस्कट में आपको रियाल्स मिलते हैं, आपको कैसे खुश रहते हैं इतना। तो वो बोले कि अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न के कॉम्पिटिशन अगेंस्ट एक और प्रश्न, है ना। तो उन्होंने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए, कहा हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। कहा कि आपका एसी कहाँ है, कहा वो ऑस्ट्रेलिया। कहा आपका मर्सिडीज कार कहाँ, बोले बोले ऑस्ट्रेलिया। कहा आपका सोफा सेट बेड लेके नहीं आया, बोले वो मैं। अरे भाई क्या सब कुछ लेके कैसे आऊंगा, मैं तो एक यात्री हूँ, मैं ट्रेवलर, मैं तो एक यात्री हूँ। कहा फिर आप जिस तरह से सोचते हो कि आप यात्री हो, ऐसा ही मुझे भी लगता है कि मैं इस शरीर में क्या हूँ, एक यात्री हूँ, और सारा का सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन वो कहाँ है, गोलोक धाम में। आपके पास एक एसी है, वहां तो एसी के बिना ही कुछ, बिना किसी चीज के, ना तत बसाए तो सूर्य हो, ना शशांको ना पावक, यद गत्वा न निर्वत्तते तद धाम परम ब्रह्म। ऐसा धाम है, ना सूर्य चाहिए, ना चंद्र चाहिए, ना ऐसा चाहिए। यहाँ पर एक एसी के चक्कर में एसी तेसी कराते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर वो एसी तेसी से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, एसी भक्ति वेदांत की शरण में आना चाहिए। फिर हमारा ऐसी तैसी होनी बंद होती है। तो ये जो 8 वसु थे, इन्होंने जन्म लिया और वो कभी पूछी नहीं, और हर बार उनको गंगा प्रवाहित कर देती, गंगा में, क्योंकि गंगा से ही मुक्ति होती थी उनकी। तो गंगा के कारण वापस वो चले गए, और उन्होंने बोला था कभी आप बोलेंगे तो फिर मैं छोड़ के चले जाऊंगा। बाद में आखिरी वसु थे दयसु वसु, उनको छोड़ करके जब उन्होंने पूछा अंतिम बार कि यार ये तो मेरा अष्टम पुत्र है, इसको भी प्रवाहित कर दोगे क्या, कहा राजा आप बोले और अब मैं चली। अपने पुत्र को लेकर के वो गंगा में प्रवाहित हो जाती है, और 16 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग देती है अंडर दी गेंजेस, और उनको तैयारी कराती है। वशिष्ठ ऋषि उनको ज्ञान सिखाते हैं, और इस प्रकार से वो युद्ध कला भी सीखते हैं। और 16 साल के बाद एक बार राजा शांतनु वहीं गंगा के किनारे गुजर रहे होते हैं हस्तिनापुर से, तो वो देखते हैं कि वहां 2 बच्चे रो रहे हैं, और उनका बहुत ही ज्यादा रुदन सुनकर उनको लगता है कि आप शायद ये मेरे काम आएंगे, पुत्र पुत्री, क्योंकि कोई है नहीं मेरे जीवन में, कोई बच्चा नहीं है, पत्नी भी चली गई। तो वो 2 पुत्र उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन वो बाद में सोचते हैं कि मेरे जो ये जो पुत्र हैं किसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो पता चलता है किसी ऋषि की संतान है, और ऋषि अनासक्त होकर अपनी संतानों को छोड़ करके चले गए हैं वन में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऋषि संतान है तो फिर ये राजा के द्वारा पोषित नहीं होने चाहिए, क्योंकि राजा तो होता है विषय होता है, मेटीरियल बॉडी होती है, मेटीरियल थॉट्स, मेटीरियल ऑपुलेंस। तो इसको इनका बढ़ोतरी भी, इनकी परवरिश भी होनी चाहिए ऋषि के द्वारा। तो आकर के वो उनको फिर एक ऋषि को दान दे देते हैं, अपने जो कैसे कहते हैं राजगुरुओं को, और राजगुरु उनका नाम रखते हैं कृपा और कृपी, कृपा और कृपी, एक पुत्र और एक पुत्री। तो बाद में वो कृपा जो थे वो कृपाचार्य बन जाते हैं, है ना, कृपाचार्य। तो ये बड़े पावरफुल बनते हैं। लेकिन उसी समय जब ये राजा इन पुत्र पुत्री को उठाकर जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि अचानक बड़े जोर के बांड चल रहे हैं, इतनी जोर से एरोज चल रहे हैं कि गंगा को चारों तरफ से जैसे डैम से बांधा जाता है, ऐसे बांध दिया है, एक बूंद भी इस पार नहीं आ रहा है। ऐसा क्या पावरफुल कौन है जो मैं गंगा को इतने समय रोकना चाहा, रोक नहीं पाया, एक कौन सा व्यक्ति है जिसने गंगा को भी रोक दिया, तो ही इज वेरी पावरफुल, तो आई वॉन्ट टू मीट हिम। तो जब जाकर के मुलाकात की, पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ, तो फिर गंगा वहां पे आई और उन्होंने कहा कि राजा ये देखिए, मैं आपको ये प्रदान करना चाहती हूँ, आपका हस्तम पुत्र, ये देवव्रत के रूप में है, लेकिन इसको कभी ये कभी विवाह नहीं करेगा, ये सदा आपके राज्य की रक्षा भी करेगा लेकिन कभी विवाहित नहीं होगा। बाद में वही देवव्रत क्या बन जाते हैं,
भीष्म
पितामह, तो बाद में कहलाते हैं भीष्म नाम होता है। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म का मतलब होता है ऐसी प्रतिज्ञा जो कभी हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसे ही जब व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, है ना, इनिशिएशन लेते हैं, तो क्या लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा, आई विल चैंट हरे कृष्णा एवरी डे 16 राउंड्स मिनिमम, ऑन फेस्टिवल डेज स्पेशल डेज 25 राउंड्स मिनिमम, आई विल फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। लेकिन कल हम चर्चा कर रहे थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करने की, सही से हम लोग 4 नियमों को जानते भी नहीं, पालन करना तो दूर की बात है। तब कहेंगे नहीं नहीं हम तो जानते हैं। तो पहला नियम क्या है, नो, इसमें क्या क्या आता है, नो इंटॉक्सिकेशन में, ची टी कॉफी, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा पान नहीं करना, मतलब चाय कॉफी नहीं पीना, तमाकू, तमाकू नहीं खाना, शराब नहीं, अल्कोहल नहीं पीना, विस्की नहीं लेना, ये नशा पान में आता है, ये नशा पान में नहीं आता है। आपसे कि ये नशे पान से तो हम बच सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन सबसे बड़ा नशा है अहंकार का, प्राइड का नशा, और वो प्राइड का नशा डिवोटी बनने के बाद भी जाता, और ये हम देखते हैं अक्सर। तो इसलिए अगर हम सही में 4 नियम का पालन करना चाहते हैं तो हमें प्राइड के नशे से दूर रहना चाहिए, है ना। तो प्राइड के नशे से दूर रहने के लिए हमें कौन सा नशा करना पड़ेगा, भक्ति का नशा है, हरि नाम का नशा है ना। तो इस तरह से ये जो प्राइड का नशा है, इसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्राइड में रहते हैं। जैसे एक बार एक लोमड़ी थी, वो बहुत ज्यादा प्राइड में रहती थी, और उन्होंने कहा कि मुझको राजा बनाओ, कभी शेर बनता है कभी हाथी बनता है, ये सारे बिग बिग एनिमल्स, और मेरा क्या होगा, मैं तो कभी राजा नहीं बनूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 साल के लिए आपको राजा बना देते हैं। कहा ठीक है, तो लोमड़ी राजा बना दी गई। लोमड़ी राजा की जय, लोमड़ी राजा की जय, सब करने लगे। लोमड़ी बड़ी खुश हुई, मेरे को राजा बनाया गया, आई एम द लीडर, चक्र लीडर नाउ, है ना। तो वो लीडर बन गई उस एरिया की, और बहुत ही प्राइड में रहने लगी लोमड़ी। लेकिन उसको दुख होने लगा, अपनी जो पास की लोमड़ियां थी उनसे कहते कि देखो जितने भी शेर आदि चीते हैं हाथी हैं, ये लोग कभी मुझे सल्यूट ही नहीं करते हैं, ऐसा राजा बनने का क्या फायदा, मैं राजा बनी किस लिए, है ताकि लोग मुझे सम्मान करें, या यहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं करता, उन्होंने तो श्लोक पढ़ा नहीं था अमानी ना अमान देना, इसलिए वो बोली मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा। कहा कुछ ऐसा करो कि मैं राजा कहलाऊं, लोग मुझे देखते ही प्रणाम करें। कहा ठीक है, आपके सर पे क्राउन लगा देते हैं, फिर लोग आपका प्रणाम करेंगे, पक्षी पशु सभी। क्राउन लगाया तो क्राउन बार बार गिर जाता था, फिर कोई सम्मान नहीं किया, उसको बहुत दुख हुआ। कहा कुछ और ऐसा करो जो परमानेंट अरेंजमेंट हो, कि ताकि मैं राजा कहलाऊं। तो परमानेंट अरेंजमेंट के लिए सबने प्लान किया, उनकी पूंछ में एक डंडा बांध दिया और कहा कि ये जो डंडा है, ये जब आप चलेंगी तो ये ठक 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 बजेगा, तो सारे पक्षी पशु आदि को पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं, लोमड़ी राजा आ रहे हैं, तो सब आपको सल्यूट करेंगे। और ऐसा अनाउंसमेंट भी करके देखिए, ठक ठक की आवाज आए, लोमड़ी राजा आएंगे, सल्यूट करना है, ठीक। तो अभी बड़े खुश रहेंगे, मैं ठक 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 करती हूँ। एक बार 1 साल समाप्त होने को आया, शेरों ने कहा अब 1 साल राजा बन लिया, बहुत हो गया इसका, अब इसे समाप्त करो, वरना ये दूसरे साल का फिर टेंडर भर देगा, दूसरे साल फिर राजा बनाओ, है ना। तो शेर ने कहा कि चलो इनकी टोली पे हमला करते हैं, और सारे शेर आदियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जब अटैक हुआ तो सबकी सब लोमड़ियां कहां भागी, अपनी गुफाओं में भागी, सब भाग करके प्रवेश कर गए अंदर, लेकिन जो लोमड़ी राजा थे वो गुफा के गेट पर उनका पूंछ का डंडा अटक गया, वो ऐसे डायगनली अटक गया, वो खटखट खटखट करती रही, अंदर नहीं प्रवेश की। शेर पहुंच गए गुफा तक, उसके डंडे को पकड़ा, उन्हें खींचा और भक्षण कर लिया, खा लिया। तो ये शिक्षा देती है ऐसी कथा हमको, कि ऐसे ही अहंकार का डंडा बांध करके हम नो इंटॉक्सिकेशन बोलते रहेंगे कि शराब सिगरेट, वो नहीं है इंटॉक्सिकेशन, है अहंकार का इंटॉक्सिकेशन। वो अगर रहेगा तो मृत्यु के समय में खींच लेगा आपको, अहंकार के द्वारा पुनः पृथ्वी पे आना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अहंकार का नशा नहीं करना। और दूसरा, नो गैम्बलिंग मतलब जुआ आदि नहीं खेलना। तो जुआ तो कोई नहीं खेलते, बोले हम तो संस्कारी लोग हैं, अपना जॉब करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को रिस्क में डालता है ना, वो भी जुआरी होता है। रिस्क में डालना मतलब हाई स्पीड ड्राइविंग, जोर जोर से गाड़ी चलाना और अपने जीवन को इंजॉइंग मेंटेलिटी में लाना, क्रिकेट देखना, फिल्म देखना, अरे कुछ नहीं अभी तो क्रिकेट बंद है, चलो स्कोर ही पता कर लेते हैं कितना स्कोर है, तो अभी है उसके अंदर गैम्बलिंग थोड़ा सा। आप सोचिए कितनी दुखद स्थिति है, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच देख रहे हैं माता जी? अभी बहुत सारे वो डंडे के दोस्त है ना। लेकिन सच्चाई है कि क्रिकेट में कोई फन नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया का एक आप या पाकिस्तान मान लीजिए, सबसे ज्यादा कंपटीशन इंडिया पाकिस्तान मैच का है, पाकिस्तान का एक प्लेयर सोचिए, एक वो एक व्यक्ति है, वो पाकिस्तानी नहीं है, ये शरीर उसका पाकिस्तानी नहीं, वो एक आत्मा है और अपनी माँ के पास प्रणाम करता है, माँ मैंने 15 साल प्रैक्टिस किया कि आई विल बिकम अ नेशनल चैंपियन और मैं नेशनल क्रिकेट टीम में भर्ती हूं और आज वो पाकिस्तान का प्लेयर फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने आ रहा है, उसकी मां ने उसके लिए प्रेयर किया, उसके लिए प्रार्थना करी, उसके लिए प्रसाद लगाया, जैसे भी उसके धर्म ने उसको बोला, और ये जो इंडियन व्यक्ति है ये आया खेलने, एक्सपीरियंस व्यक्ति, इसने पहला बॉल डाला और वो व्यक्ति आउट हो गया और इंडियंस जो है वो ताली बजा रहे, खुश हो रहे हैं, किस पर? किसी के दुख होने पर। उसकी माँ को कितना दुख होगा, मेरा बेटा फेल हो गया, और हम किसी के दुख होने पर ताली बजा रहे, वेरी नाइस, ये एक्चुअली क्या है? इट्स गैम्बलिंग, है ना? किसी की दुख में खुश होना ये वैष्णव का आचार है, परा दुखे दुखी होते हैं, पाकिस्तान का आउट हो गया तो हम दुखी होंगे, तो परा दुखे दुखी कहाँ है, हम तो है परा दुखे सुखी, परा सुखे प्रभु आपके पास इतना, मेरे पास इतना काम प्रभु, परा सुखे दुखी होते हैं हम लोग, तो हमें सीखना है परा दुखे दुखी। और चौथा क्या, तीसरा क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग। मीट ईटिंग मतलब क्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, जानवर आदि को नहीं खाना, लहसुन प्याज आदि तमोगुणी वस्तु नहीं खाना, लेकिन हम क्या हिंसा से दूर रह पाते हैं? भगवद गीता कहती है अगर आपका कोई कर्म किसी को दुख प्रदान करता है, आपने कुछ एक्शन किया और वो किसी को, 12 चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान बता रहे हैं 12वें अध्याय में कौन मेरा प्रिय है, है ना? भगवान ने पूरी सिक्वेंशियल बताया है कौन मेरा प्रिय है, सामा प्रिय सामा प्रिय सामा प्रिय, भगवान बोल रहे हैं ये मेरा प्रिय, ये मेरा, उसमें वो कह रहे हैं अगर तुम्हारा एक्शन भी किसी को कष्ट पहुंचाता है तो वो मेरा प्रिय नहीं है। तो हम किसी को ऐसा शब्द बोल देते हैं जिससे किसी को दुख होता है, अरे प्रभु आपको क्या, प्रभु आपको सेवा करना भी नहीं आता क्या प्रभु, उसी को दुख लगा, मैं पहली बार कर रहा था, मैं नहीं कर पाया, अब बहुत दुख हुआ, तो आपने क्या किया, हिंसा किया या अहिंसा किया? और हिंसा करने के लिए तो आपने प्रण लिया है कि आई विल नो मीट ईटिंग, है ना? लेकिन ये हिंसा करना सही मायने में शाब्दिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, सभी प्रकार की हिंसा नो मीट ईटिंग के अंदर ही आती है, और ये मेरा कहना नहीं है, ये आचार्य गणों का कहना है। उसके बाद में चौथा क्या है, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। इलिसिट मतलब लोग सोचते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, परिस्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है, या फिर अपनी पत्नी के साथ भी संतान उत्पत्ति के लिए ही हमें संग करना है, ऐसा बताया गया है। लेकिन देखिए अगर इसकी डिटेल में जाकर के, तो नो इलिसिट रिलेशन का मतलब है नॉट इवन थिंकिंग, सोचना भी नहीं है, है ना? लेकिन सोचते हैं, बोलते क्या है, लोग बेनिफिट लेते हैं, अरे कलयुग में एडवांटेज है, मन का पाप नहीं लगता। लेकिन मन का पाप जो है वो एक दिन सामने प्रकट होता है, पहले होती है थिंकिंग, फिर होती है फीलिंग, फिर क्या होती है विलिंग, फिर क्या होता है एक्शन। तो उस एक्शन में आने से पहले विलिंग आएगी, विलिंग से पहले फीलिंग आएगी, फीलिंग से पहले थिंकिंग आएगी। तो थिंकिंग के लेवल पे अगर इफ वी कैन स्टॉप तब तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप गेटिंग अटैच्ड टू द थिंग्स व्हिच मेक यू थिंक अबाउट दैट थिंग, है ना? तो ये है इस प्रकार से ये चार नियम है। अभी कैसे लग रहे, सरल मुश्किल? बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें काम करना है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो न सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे मेक्स मैन क्या सक्सीड वन डे, है ना? ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू, तो एक दिन आप हरे कृष्ण जपते जपते इन नियमों का पालन करते करते शुद्ध भक्त बनेंगे और फिर गंगा जी आप पर कृपा करेंगे सही मायने में, है ना? चार नियम कोई तोड़ रहा हो दिल्ली में, बॉम्बे में, मस्कट में, ओमान में, और इधर आए गंगा जी में डुबकी मारे तो उसका मुक्ति हो जाएगी क्या आपको लगता है? है ना? तो इस तरह बहुत मुश्किल है। सच्चाई है कि पहले भक्त बने और उसके बाद में ही सारी प्रक्रिया करें। तो बिकमिंग अ डिवोटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य शरीर पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू, जान पूछ करके विष खा रहे हैं। एक होता है अनजाने में किसी ने पेपर पे साइनाइड लगा दिया, पलटते पलटते टच किया, ओह आदमी डेड अनोइंगली। लेकिन ये कैसा है, जानते हैं मनुष्य शरीर पाकर के एक ही कर्तव्य है राधा कृष्ण का भजन करना, जानिया सुनिया, जान बुझ कर भी वी आर इग्नोरिंग इट. अरे प्रभु टाइम नहीं है ना. फर्स्ट आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई वॉन्ट टू सेटल माई फैमिली, इफ आई गेट टाइम देन आई विल डू. अरे भगवत गीता इज फॉर द रिटायरमेंट पीपल. आपने देखा कितने बुजुर्ग लोग हैं इस्कॉन में, इन लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए नहीं है. ऐसा नहीं है, इस्कॉन में बहुत सारे यंग है और मैक्सिमम यंग ही है डिवोटीज. उसका कारण है जो समझदार है वो सही चीज को पकड़ता है ना. सुमेधा सा, जिसके पास में बुद्धि है और बुद्धि भी सुबुद्धि है, सुमेधा, तो वो व्यक्ति जल्दी से इसको पकड़ता है. तो हमें भी ये जो स्थान पे आए हैं इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. मोर कीर्तन, मोर कथा, मोर चैंटिंग, है ना. डोंट थिंक अभी नेक्स्ट स्टॉप में क्या है. डोंट मेक इट अ पिकनिक, मेक इट अ स्पिरिचुअल यात्रा. यात्रा शब्द जो बड़ा महत्वपूर्ण है. हमारा जन्म हुआ है और मृत्यु होगी, उसके बीच में हम सब एक यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा की ये एक सब ट्रिब्यूटरी है स्पिरिचुअल यात्रा. वो ये स्पिरिचुअल यात्रा हमारी जो शारीरिक यात्रा है उसको एक समय पूर्ण कर सकती है, अगर हम उस सही मायने में भक्ति से करें. ठीक है, तो अभी प्रवेश करते हैं. हरे कृष्णा,
हरे बोल.
थैंक यू माता जी, थैंक यू एवरीवन. तो आज शाम को क्लास है माता जी, क्या 6 बोल रहे ड्राइवर्स, 70 किलोमीटर ओनली नाउ, 6:30 बजे. No, it's 65.
Where are we going?
We are going to Uttarkashi na. Gangotri is there. We are staying at Uttarkashi tonight. To Uttarkashi is 60 kilometers. After Prasadam we can go. So, because tomorrow morning I will be leaving, when you will leaving to Gangotri, I will leave for Delhi back. So, आप लोगों के साथ में एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ. सभी के साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हर ग्रेस बलदायिनी माता जी का. माता जी ने यहाँ पर बुलाया, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर बुलाया और बोलने का मौका दिया है. और यहाँ पर जब मैं आया, माता जी को बोल रहा था कि हमारे वहाँ पर दिल्ली में इतने सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ जाते हैं लेक्चर देते हैं और वहाँ लेक्चर देते हैं सिद्धांत. तो लेक्चर देते वक्त क्या होता है, वहाँ पर होता है कि किसी भी यात्रा में जाते हैं एक फैमिली फील होता है कि ये तो हमारी फैमिली, हमने डेवलप किया, इनको लेके आए, हमारे भक्त, अपना अपना लगता है. तो माता जी ने जब बोला प्रभु जी आपको आना है हमारी यात्रा में, तो आई वॉज थिंकिंग कि पीपल विल बी न्यू, आई डोंट नो देम, हाउ विल आई सस्टेन, हाउ विल आई सर्वाइव विद द कम्युनिटी. 5-6 दिन रहना है, किसी व्यक्ति का व्यवहार 1 मिनट भी सहन नहीं किया जाता. अभी तो 5 दिन मुझको कौन सहन करेगा, है ना. मैं जाऊंगा उन लोगों की अच्छी खासी यात्रा, मेरे कारण डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं क्या बोलूंगा उनको, क्या पता मेरी बात उनको कभी ऐसी लगे, क्योंकि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, तो आई स्पीक शास्त्र. मैं ऐसा बोलने फ्लावरी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ, जो अच्छी लगने वाली चीजें बोलूँ, ना अच्छी लगने वाली ना बोलूँ, आई स्पीक स्क्रिप्चर्स. तो मैं का पता नहीं किसी को बुरा लग गया तो क्या होगा, इतने सारे लोगों को दुख भी हो सकता है मेरे कारण. बट वेन आई केम हियर एंड स्टार्टेड स्पीकिंग, सो माता जी को मैंने शेयर किया, आई रियलाइज दैट दिस इज अ फैमिली विच इज एक्चुअली आई एम फीलिंग आई एम इन माई फैमिली ओनली. और यहाँ पर इतने सारे अच्छे भक्त मिले और सब लोगों के साथ में इतना अच्छा रिलेशन है, सो आई वाज थिंकिंग जब कल जाएंगे तो आई विल मिस यू पीपल, है ना. सो आप सब लोगों का अगर फोन नंबर्स और ईमेल आईडी हमको मिले तो वी ऑल कैन बी इन टच आफ्टरवर्ड्स आल्सो, है ना. क्योंकि अभी शरीर की यात्रा तो लंबी है, तो उसमें अगर छोटे छोटे यात्राओं में हम मिलते रहेंगे देन विल बी फ्रूटफुल, बिकॉज आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू पीपल. बहुत सारा कुछ आप लोगों से भी सीखा है, इतना अच्छा मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, इंस्पिरेशन है, सब भक्त सेवा में लगे रहते हैं, तो बहुत अच्छा. यू हैव मोटिवेटेड मी फॉर मोर सर्विसेज टू श्रील प्रभुपाद. और इस यात्रा में प्रवचन के दौरान अगर कोई शब्द किसी को कष्टकारी लगा हो या मेरा एक्शन, तो उसके लिए क्षमा करिएगा मेरे. तो आप लोग अपने एक पेपर पे अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम दे सकते हैं, दोज हु वांट टू गेट कनेक्टेड. तो फिर बाद में आप, फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी कनेक्ट रह सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ईमेल आईडी में भी कर सकते हैं. फेसबुक अकाउंट आई डोंट यूज, सो फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप है, उसमें कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन बी कनेक्टेड. बाकी माता जी है मेन कनेक्शन तो हमारा, तो उनके थ्रू वी कैन बी कनेक्टेड. और बाकी जैसे हमने कल चर्चा किया था, फॉर द टेम्पल यू कैन गिव टू प्रभु जी और राधे श्याम प्रभु. हरे
कृष्णा,